Canyon.
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا گزشتہ خطبے میں میں نے ان مہمانوں کی عظیم الشان قربانی کا ذکر کیا تھا جو بہت سردی میں باہر جلسہ گاہ میں بیٹھے رہے اور اس آزمائش پر حیرت انگیز صبر کے ساتھ پورے اترے. اس خطبے کے بعد ایک بیرون ملک سے آئی ہوئی خاتون نے بڑی ہی لطیف انداز میں مجھ سے شکوا کیا اور کہا کہ تمہاری بہنوں اور بچیوں کا کیا قصور تھا کہ ان کا تم نے ذکر نہیں کیا. اور انہوں نے وجہ یہ بیان کی شکوے کی کہ جماعت احمدیہ میں ایک تاریخ بن رہی ہے اور اس تاریخ میں خلفائے وقت کے خطبات ایک بہت اہم کردار ادا کر رہے ہیں. چنانچہ اگر وقت کے قرب وقت کی قربانیوں کا ذکر محفوظ ہو جائے تو آئندہ نسلوں کو دعا کی تحریک ہوتی ہے. تو انہوں نے مختصراً یہ کہا کہ دراصل احمدی بہنوں کو دعا سے محروم نہیں رکھنا چاہیے, اس لیے ان کا ذکر چاہیے تھا اور یہ شکوہ بجا ہے. واقعہ یہ ہے کہ جو حالات میرے علم میں آئے ہیں ان کی روح سے احمدی بہنوں نے مردوں سے زیادہ قربانی کا مظاہرہ کیا ہے, کم کا نہیں. مثلا پہلے وقت میں جبکہ ابھی بارش ہو رہی تھی اور سردی شدید تھی, جو جائزہ ہم نے لیا معلوم یہ ہوا کہ مردوں کے جلسہ گاہ میں نسبتاً بہت کم آدمی ہیں اور عورتوں کے جلسہ گاہ میں بہت زیادہ خواتین ہیں, باوجود اس کے کہ ان کی گودوں میں بہت سی گودیوں میں بچے بھی تھے, ہاتھوں میں انہوں نے اپنے سلیپر وغیرہ جو بھی وہ پہنتی تھیں گرگابیاں وہ اٹھائے رکھے تھے اور کیچڑ میں لت پت جا کر بڑے صبر کے ساتھ انتظار کرنے لگی کہ جلسے کے بارے میں کیا فیصلہ ہوتا ہے. اور شام کو بھی اسی طرح کہا یہ جاتا ہے کہ مستورات باوجود اس کے کہ بچے شدید سردی میں تکلیف بھی محسوس کر رہے تھے لیکن بڑے صبر کے ساتھ وہ پورا وقت بیٹھی رہی اور کوئی ان میں سے اٹھ کے بھی نہیں گئی. تو یہ ایسے واقعات ہیں تاریخ احمدیت کے جو واقعتاً محفوظ ہونے چاہیے تاکہ آئندہ نسلیں اپنے آباء و اجداد کی عظیم ہمتوں کا ذکر کر کے ان کے لیے دعا کرتی رہیں. دوسرا میں ربوہ کے دکانداروں کا خود ذکر کرنا چاہتا ہوں. مجھے خیال آیا کہ یہ حصہ بھی ایسا ہے جو دعا کا محتاج ہے. اس دفعہ ایک دو مرتبہ خطبات میں یہ ذکر کیا گیا ये दुकानें खुली रहती हैं जलसे के दौरान और उससे बुरा असर पड़ता है, खुद भी मामलेकियों से महरूम रह जाते हैं दुकानदार और दूसरों को भी महरूम रखते हैं। और इसी तरह नमाजों के औकात में दुकानें बंद नहीं करते और अपने कारोबार में मसरूफ रहते हैं। इस जलसे पर जो जायजा लिया गया है उससे मालूम हुआ है कि अल्लाह ताला के फजल से एक भारी अक्सरियत, गैर मामूली तौर पर नुमाया अक्सरियत ने इन नसाहे पर अमल किया, जलसे के दौरान दुकानें बंद रखी और नमाजों के औकात में भी अल्लाह ताला के फजल के साथ वो दुकानों का कारोबार छोड़ के मस्जिद में हाजिर होते रहे। तो ये लोग भी खास तौर पर हमारी दुआओं का मोहताज हैं। हमरे वाकया ये है कि खिलाफत की बरकात में से एक ये भी है कि बाज़ दफ़ा बज़ाहिर नसीहत असर नहीं कर रही होती, लेकिन जब खलीफा वक्त की ज़ुबान से वही नसीहत निकलती है तो उसमें अल्लाह ताला गैर मामूली असर पैदा फरमा देता है। यही वो दुकानदार हैं जिनको साल हर साल से मैं समझाने की कोशिश करता रहा, इनके इजलासात बुलाए, क्योंकि अफसर साहब जलसा ने बहसियत नायब अफसर ये मेरी जिम्मेदारी लगा रखी थी कि तरबियत के अमूर की अमूमी निगरानी करूं, और कोई असर नहीं पड़ता था, बहुत जोर मारता रहा मैं, लेकिन वही जिस तरह कहते हैं कि पंचों का कहना सर आंखों पर लेकिन परनाला नहीं रहेगा। तो सर आंखों पर बात को करके जब ये वापस जाते थे तो उसी तरह दुकानें खोल देते थे, इल्ला माशाल्लाह। वही मैं हूं, बहसियत जात के तो वही हूं, लेकिन चूंकि ये आवाज खिलाफत की तरफ से बुलंद हुई इसलिए अल्लाह ताला ने इसमें गैर मामूली असर रख दिया। लेकिन ज़िमनन एक बात की तरफ मैं तवज्जो दिलानी चाहता हूं, वो ये है कि ये तो अल्लाह ताला का बड़ा एहसान है कि खिलाफत की आवाज में उसने असर रखा है और जमात में गैर मामूली अतात की रूह रखी है, लेकिन असल जो मोमिनों की जमात है, जो हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखना चाहते हैं, उस जमात में नसीहत अहमियत रखती है, नसीहत करने वाले की कोई अहमियत नहीं। यानी अमरे वाकया ये है कि जहां तक नसीहत सुनने वाले का ताल्लुक है उसको ये नसीहत फरमाई गई कि तुम ये ना देखो कि किसने तुम्हें क्या बात कही है, ये देखो कि वो बात है क्या। अगर अच्छी बात है तो गंद से भी मिलेगी तुम्हें, किसी गंदे शख्स से भी मिले तो तुम्हारी चीज है, तुम्हारी दौलत है। अलहिकमत हो ज़ाल्लतुल मोमिने, उसको इस तरह कबूल करो गोया तुम्हारी अपनी चीज खोई गई थी। उठाओ उसको साफ सुथरा करो, अगर उस बात में कोई खम है, कोई कजी है, कोई तान शामिल हो गया है तो ये बातों के गंध होते हैं। तुम्हारी चीजें भी बाज़ दफा गिर जाती हैं गंद पर, ढेरियों पर, तुम उनको उठाते हो, धोते हो, साफ करते हो, तो इन हिकमत की बातों को भी इसी तरह कबूल कर लिया करो। तो ये है वो असल तसव्वुर मोमिनों की जमात का जो हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कायम फरमाया, और ये सबसे आला तसव्वुर है। यानी अपनी डिफेंस लाइन को किनारों तक पहुंचा दो। इसी मजमून को कुरान करीम ने बयान फरमाया और राबितु के एक लफ्ज में कि अपने सरहदों की हिफाजत करो। सेकंड डिफेंस लाइन या थर्ड डिफेंस लाइन या सेंट्रल डिफेंस लाइन पर अगर तुम वापस जल्दी जल्दी आना शुरू हो गए तो तुम्हारे लिए कई किस्म के खतरात दरपेश होंगे। तो नसीहत के मामले में राबितु का हुक्म यह होगा कि अदना आदमी नसीहत करे या आला नसीहत करे, तुम्हारे दिल में उसकी इज्जत है या उसके लिए तहकीर पाई जाती है, हाँ तुम्हारे दिल में उसके लिए नफरत है, हाँ मोहब्बत पाई जाती है। आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ अगर मंसूब होते हो तो नसीहत की बात को देखो, ये ना देखो कि कौन कह रहा है। जब ये जज्बा पैदा हो जाता है तो फिर नसीहत में जो नवाफिल हैं उन पर अमल करने की भी तौफीक मिलती है। कुछ नसीहत में फराइज हैं जिनका अदल के साथ ताल्लुक है, कुछ नसीहत में नवाफिल हैं। तो जिन लोगों को नसीहत के अदल के क़याम की तौफीक मिलती है अल्लाह ताला उनको नवाफिल की इस रंग में तौफीक अता फरमाता है कि जब ऐसे लोगों की तरफ से बात मिले जिनके लिए दिल में ज्यादा मोहब्बत और ज्यादा एहतराम पाया जाता है तो वो ये नहीं देखा करते कि ये बात कहने का हक भी है कि नहीं, ये हम पर फर्ज भी है कि नहीं। मुंह से बात निकलती है और उसे पूरा कर देते हैं। मसलन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दफा खुतबा इरशाद फरमा रहे थे, तो बाहर से कुछ आने वाले अभी जिस तरह बाज देर में आते हैं अभी भी आ रहे हैं, लोग अभी पहुंच रहे थे, तो कुछ लोग मस्जिद नबी में पीछे खड़े थे। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बैठ जाएं। बाहर से एक शख्स के कान में आते हुए आवाज कान में पड़ी, तो वो बैठ गया और परिंदों की तरह खुदक खुदक के मस्जिद की तरफ चलने लगा। एक और गुजरने वाले ने यह हैरत अंगेज नजारा देखा, उसको हंसी भी आई होगी, उसने कहा तुम्हें क्या हो गया, क्या हरकतें कर रहे हो? उसने कहा मेरे कान में हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज पड़ी है कि बैठ जाओ, तो मैं बैठ गया। उसने कहा आपने तो मस्जिद वालों को फरमाया होगा, ये तो नहीं कहा कि जो रस्तों में चल रहे हैं वो भी बैठ जाए। उसने कहा मैंने ये नहीं सुना कि किसको कहा, इसलिए मेरे कान में तो बैठ जाओ की आवाज सुनी और मैं बैठ गया। ये फिर आला मुकाम जो है अताब के, इनकी तौफीक मिलती है अगर अदना बुनियादी मुकामात पर कोई कौम कायम हो जाए। इसलिए इसके बहुत फायदे हैं। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की छोटी छोटी नसीहतों में भी कौमों के लिए अजीम शान तरक्की के राज हैं। जो आपके गुलाम हों अगर वो इनकी तरफ तवज्जो ना करें और इन पर गौर छोड़ दें तो बहुत बड़ी नेमतों से महरूम हो जाएंगे। इसलिए जमात को चाहिए कि नसीहत के मामले में असल नसीहत हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है और उसी को पेश नजर रखते हुए ये ना देखा करें कि किसने उनको क्या नसीहत की है, ये देखा करें कि नसीहत क्या है अपनी जात में। और अगर उसमें कुछ कहने वाले के की गंद की मिलौनी भी शामिल हो गई है, मसलन बाल लोग नसीहत में दरअसल अपने बदले उतार रहे होते हैं, उनका मकसद ये नहीं होता कि किसी को फायदा पहुंचे, वो अपने दिल का दुख निकालते हैं, ऐसी सूरत में भी कितनी अजीम शान नसीहत है। ज़ाल्लतुल मोमिन कि तुम ये समझना कि तुम्हारी गुमशुदा चीज है, और गुमशुदा चीज में भी जब गंद में लग जाते हैं बाज़ दफा खराबियां पैदा हो जाती हैं, इंसान अपना हक समझ कर लेता है और उन खराबियों को दूर कर देता है, उसको असल की तरफ लौटा देता है। तो इतना गहरा फलसफा है इस छोटी सी बात में, अगर आप उस पर अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला फिर आपको ऐसी हैरत अंगेज अजीम शान अताअत की तौफीक मिलेगी कि दुनिया उसके तसव्वुर से भी आ रही है, दुनिया का वहम भी वहां नहीं पहुंच सकता जिस मुकाम पर जमात अहमदिया फायल होगी अताअत के मामले में। क्योंकि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में इन नसीहतों पर अमल करने के नतीजे में हमने यही नजारे देखे। एक तीसरी बात मैं ये कहनी चाहता हूं कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो अफ़व और रहम और शफ़क़त का सलूक फरमाया और उसके पाक नमूने कायम किए, उनका जिक्र तो बहुत ही तवील है। एक मजलिस तो क्या, सैकड़ों मजालिस में भी उस जिक्र का हक अदा नहीं हो सकता, क्योंकि हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का ये एक अजीम शान पहलू है कि वो दूर से भी हसीन नजर आती है और करीब से भी हसीन नजर आती है, और करीब जाकर हुस्न के नए नए पहलू सामने आने लगते हैं। जिस तरह बाग को आप भी एक नजर से देखते हैं आपको बड़ा हसीन नजर आता है, लेकिन तितलियां फूलों का जब रस चूसती हैं तो उनको फूल का एक और हुस्न नजर आना शुरू हो जाता है। करीब से देखें तो तफासिल नजर आती हैं हुस्न की, तो कामिल हुस्न जो जाहिर भी हो और बातिन भी हो उसकी ये एक खुसूसी इलामत है कि वो दूर से भी अच्छा दिखाई देता है और करीब से भी, और जितना करीब आए उसका हुस्न ज्यादा जाज़िबे नजर होता चला जाता है। तो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को इस पहलू से मुतालिया करने की जरूरत है। छोटे छोटे वाकयात हैं, उनको उन पर आप गौर करें तो उनके अंदर ही बड़े अजीम शान पहलू सीरत के दिखाई देते हैं। लेकिन जो सबसे अहम बात है वो ये कि सीरत के मजमून को जब हम सुनते हैं तो उस तरह नहीं सुनते या उस तरह नहीं सुनना चाहिए जिस तरह एक खिलाड़ी की खेल का बाहर बैठे मुजाहरा कर रहे हों। बहुत अच्छी खेल हो रही है क्रिकेट की, आप बाहर बैठे देख रहे हैं और बड़ा लुत्फ उठा रहे हैं, और खेल के बाद घर को रुखसत हुए आपको बल्ला भी पकड़ना नहीं आता। कोई आपको ये नहीं कह सकता कि तुम इतनी तारीफें कर रहे थे आप बल्ला तो पकड़ के दिखाओ। वो कहेगा तुम पागल हो गए हो, बल्ले का मुझसे क्या ताल्लुक, मैं तो नजारा कर रहा था, मुझे हक है लुत्फ उठाने का, हाँ मुझे खेल से कोई वाकफियत नहीं। लेकिन सीरत के मजमून में ये नहीं कह सकता इंसान। सीरत का मजमून, उस सीरत का मजमून जो उसवा बन गई हो, उसमें ये जवाब काबिले कबूल ही नहीं है, अकल के खिलाफ जवाब। जब उसवे को सामने रखकर आप उसके हुस्न का मुतालिया करते हैं या उसके हुस्न का जिक्र करते हैं, तो लाजमन उसको इख्तियार करने की पाबंदी आप पर आयद हो जाती है। हस्बे तौफीक जितना भी इख्तियार कर सकें, लेकिन लाजमन अपनी अपनी हैसियत और तौफीक के मुताबिक उस तरफ कदम आगे बढ़ाने पड़ेंगे। अगर सीरत के हुस्न का लुत्फ उठाने के बाद आप घरों को लौट आए और उस तरफ एक भी कदम आगे ना बढ़ा हो तो यह मुनाफ़त है, ये झूठ है सिरासर। ऐसे लोगों को ना रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजने का हक रह जाता है, ना उनके दुरूद के विमाने बनते हैं, क्योंकि जिनका अमल अपने कौल को झुठला रहा हो, जिनका फेल अपने नजरियात की तरदीद कर रहा हो, उनके अमाल की कोई भी हकीकत नहीं रहती और उनके कौल की कोई हकीकत नहीं रहती। चुनांचे कौल का हुस्न भी हुस्न अमल के साथ वाबस्ता कर दिया गया, जैसा कि कुरान करीम फरमाता है मन आहसनो कौलम मिम्मन दा इलल्लाहे व अमला सालिह। बड़ा हसीन कौल है कि अल्लाह की तरफ आओ, खुदा की तरफ बुलाने से बेहतर कौन सा बुलावा हो सकता है, लेकिन शर्त यह है कि अमल तायीद कर रहा हो इस कौल की। जिसकी तरफ बुलाते हो तुम भी तो नजर आओ कि उसकी तरफ से आए हो, यह तो नहीं कि बुलाते हो हुस्न की तरफ और नजर यह आ रहा हो कि इंतहाई गंदगी से निकलकर इंसान आया है। तो यही मजमून है जो जिसको जो हम सीरत पर इतलाक करके देखते हैं तो मालूम होता है कि आहज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का मजमून बयान करना भी इंतहाई जिम्मेदारियों को दावत देता है और सुनना भी इंतहाई जिम्मेदारियों को दावत देता है। इस मजमून में हत्तल मकदूर ये दुआ करते रहना चाहिए और ये कोशिश करते रहना चाहिए कि जो कुछ सुने वैसा बनने के लिए कुछ ना कुछ कोशिश जरूर हो। अगर मामूली पाक तब्दीली भी पैदा हो जाए तो अल्लाह ताला उस कोशिश को कबूल फरमाता है और आगे बढ़ा देता है। इसलिए जब आप सुनते हैं कि आ हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिद्दीक थे तो कुछ सच के मेयार में इजाफा करना जरूरी हो जाता है। जब आप सुनते हैं कि अमीन थे तो अपनी अमानत के मेयार को बढ़ाना जरूरी हो जाता है। जब आप सुनते हैं कि मोहसिन थे और बख्शिश करने वाले थे तो अपनी बख्शिश के मेयार को बढ़ाना जरूरी हो जाता है। लेकिन बख्शिश कैसे करते थे, क्यों करते थे, कहां फरमाते थे बख्शिश, कहां नहीं फरमाते थे, इस मजमून का मुतालिया आप करें तो सिर्फ नेक अमल की तौफीक ही नहीं मिलती बल्कि इतना गहरा फलसफा आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किरदार के पस मंजर में दिखाई देता है कि एक छोटे से अमल में भी अजीमुशान तालीमात का समंदर नजर आता है। इस पहलू से जब आप गौर करते हैं और दीगर हुस्न वालों से हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुआवजा करते हैं तो उनकी कोई भी हैसियत आ हजूर के मुकाबले पर नजर नहीं आती। अब हुस्ने यूसुफ मशहूर है और हुस्ने यूसुफ का जो असल हुस्न है जिसका सीरत से ताल्लुक है उसका वाकया कुरान करीम में महफूज किया है चंद अल्फाज में, ला तसरीबा अलैकुम अल्यौम। आज के दिन तुम पर कोई पकड़ नहीं, कितना अजीम शान माफी का ऐलान है और बहुत ही खूबसूरत किस्सा दिखाई देता है। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबीयत में जो इज्ज़त और इंकिसार था उसमें एक ये बात भी हैरत अंगेज तौर पर नजर के सामने आती है कि जब फतेह मक्का के बाद आपने मुआफ़ फरमाया कौम को تو حضرت یوسف کی طرف توجہ پھیر دی اور وہ الفاظ استعمال کیے جو حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام استعمال کر چکے تھے، اور فرمایا جس طرح میرے بھائی یوسف نے کہا تھا میں بھی وہی کہتا ہوں. حالانکہ اگر آپ تجزیہ کر کے دیکھیں، دیانتداری سے مقابلہ کریں، تو اس حسن یوسف کو حسن محمد مصطفیٰ سے کوئی نسبت ہی نہیں رہتی. حضرت یوسف نے کیا معاف کیا اور کس طرح معاف کیا، اس پر ذرا غور کر کے دیکھیں. حضرت یوسف کے بھائیوں کا تو یہ سلوک تھا کہ آپس کے مشورے کے بعد انہوں نے فیصلہ کیا کہ بچنے کے امکان ہوں، وہاں سے قافلے گزرتے ہوں اور کسی قافلے والے کی نظر پڑ جائے اور وہ ہمارے بھائی کو بچا کے لے جائے، یہ ظلم تھا. اور ہرگز نہ کسی نے چپیڑ ماری، نہ کوئی دکھ دیا، نہ گالیاں دیں، بڑے پیار کے ساتھ وہاں کھیلتے کھلاتے کنویں میں چھوڑ کر آپ بھاگ گئے. اور اس ظلم کے واقعہ کے بعد کتنے ہی سال گزر گئے ہیں جب وہ دوبارہ اپنے بھائی کے سامنے آتے ہیں اور ایسی حالت میں آتے ہیں کہ ان کی حالت بڑی قابل رحم ہے، فاقوں کے ساتھ ان کے پیٹ ان کی کمروں سے لگے ہیں. کتنے مشقت کا سفر انہوں نے اختیار کیا بھوک سے تنگ آ کر، اور بڑی قابل رحم حالت تھی. اتنی مدتوں کے بعد اگر ایسا بھائی کو مل جائے تو انسانی فطرت میں خود رحم کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے. اور پھر بعد کے حالات سے پتہ چلتا ہے، ایک دفعہ آئے پھر دوسری دفعہ آئے، اور قانون ملک کا اتنا سخت تھا کہ اپنے بھائی کو قانون ملک کے خلاف روک بھی نہیں سکتے تھے، انہیں بدلہ کیا لینا تھا. بدلہ تو لیتا ہے مطلق العنان حاکم، جس کے قبضہ قدرت میں کوئی چیزیں ہیں. قرآن کریم کا احسان ہے کہ حضرت یوسف کے حسن کو اس رنگ میں پیش فرمایا، ورنہ اگر آپ تجزیہ کر کے دیکھیں تو بدلے کی تو طاقت کوئی نہیں تھی. معافی سے مراد یہ ہے کہ میں نے دل سے تمہارا دکھ دور کر دیا، اس سے زیادہ اس معافی کے کوئی معنی نہیں. لیکن جہاں تک انتقام چھوڑنے کا تعلق ہے، اس کا لا تصریف سے وہاں کوئی تعلق نہیں بنتا، کیونکہ اس ملک کے قانون میں حضرت یوسف کو یہ دخل نہیں تھا کہ قانون تبدیل کر کے اپنے بدلے چکانے کے لیے کسی پر کوئی زیادتی کر سکے. یہ قرآن کریم کی گواہی ہے. اس کے مقابل پر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واقعہ لا تصریبہ علیکم اليوم دیکھیں تو کوئی نسبت ہی آپس میں نظر نہیں آتی. یہ بھی حضور اکرم کا احسان تھا کہ حضرت یوسف کا ذکر فرما دیا اور ان الفاظ میں ذکر فرمایا، اور عزت کی انتہا ہے کہ توجہ اس طرف پھیر دی، اپنی طرف سے ہٹا کے. حالانکہ واقعہ لا تصریبہ علیکم اليوم جو مکے میں رونما ہوا، اس کی تو حیرت انگیز شانیں ہیں الگ الگ، اور ہر پہلو سے جب اس کا آپ جائزہ لیتے ہیں تب آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ وہ واقعہ تھا کیا. سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ عرب قوم کا اپنا طریق کیا تھا، کس قدر ان میں معافی کے جذبے پائے جاتے تھے، کس قدر وہ عفو کرنے والے لوگ تھے، اور کس حد تک وہ کینوں میں مبتلا قوم تھی. اس قومی پس منظر کو بھلا کر ہم کس طرح اس واقعہ کا جائزہ لے سکتے ہیں. عرب قوم کے معاملات کا چھوٹا سا جائزہ اس طرح آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان کی بعض لڑائیاں 100-100 سال تک چلی ہیں معمولی معمولی باتوں پر، اور بدلہ لینا تو ان کی سرشت میں داخل تھا. وہ ہرگز معافی کا نام نہیں جانتے تھے، بدلے کے معاملے میں اپنے عزیز ترین اقربا سے بھی بدلہ لیتے تھے، اور ادنا ادنا چیزوں کا بدلہ اعلیٰ اعلیٰ چیزوں سے لیا کرتے تھے. یہاں تک تشدد پایا جاتا تھا انہیں، اور پھر اس پر فخر کرتے تھے. قصائد لٹکائے جاتے تھے خانہ کعبہ میں، جن میں اپنے مظالم کی داستانوں پر فخر کیا جاتا تھا. یعنی ان کا فخر تھا کہ ہم بدلہ لینے والی قوم ہیں اور ہرگز معاف نہیں کر سکتے. چنانچہ جنگ ایک ایسی لڑی گئی وہاں جس میں بنو تغلب اور بنو بکر کے درمیان جنگ اس وجہ سے شروع ہوئی کہ بنو تغلب کے سردار کلیب نے ایک پرندے کو پناہ دی. پناہ بھی کیا دی، ایک پرندے نے اس کے ہاں درخت پر ایک انڈے دیے، اور اس نے اوپر دیکھا اور کہا اچھا میں تمہیں پناہ دیتا ہوں، تمہارا کوئی نہیں کچھ بگاڑے گا. दूसरे दिन उसकी बीवी के भाई की के एक मेहमान की ऊंटनी वहां आई और उसने ऊपर नजर की तो देखा कि वहां अंडे घोंसला टूटा हुआ है और अंडे गिरे पड़े। वो यकीन से नहीं कह सकता था कि ये इसी ऊंटनी की शरारत है, लेकिन उसे शक पड़ा कि शायद इस ऊंटनी ने वो दरख्त के पत्ते खाते खाते वो घोंसला भी तोड़ दिया। वो अपनी बीवी के भाई के पास गया और उसने कहा कि आज मेरे दिल में एक ऐसा सौदा समाया हुआ है कि शायद मैं कुछ कर गुजरूं। आज के बाद तुम्हारे मेहमान की ऊंटनी मेरी चरागाह में नहीं चलेगी, और अगर ये देखी गई तो मैं उसके दूधदान में तीर मार के उसके दुखों के साथ हलाक करूंगा। ये थी अरब कौम। और उसकी बीवी के भाई का जवाब सुने कि मेरे मेहमान की ऊंटनी के दूधदान में अगर तुमने तीर मारा तो मैं खुद तुम्हारा सीना छेद दूंगा और मैं तुम्हें खुद हलाक करूंगा। यह वाकया गुजर गया। उसकी बीवी हलीला ने बड़ी कोशिश की, सुलह सफाई की, लेकिन खिंचाव पैदा हो गया। आखिर एक दिन वो ऊंटनी, उसके मेहमान की ऊंटनी, जब वो पानी अपनी ऊंटियों को पिला रहा था कुलैब, तो उसके गले में जाकर उसने साथ पानी पीना शुरू कर दिया। उसने तीर मारा और वाकयातन दूधदान पे तीर इस तरह मारा कि वो बिलबिलाती हुई वापस दौड़ी और अपनी मालिका के घर में, जो जसास उसके साले की खाला थी, उसके घर जाके तो वो निढाल होकर गिर गई और दम तोड़ दिया। उसने वावेला किया कि ए बनू बकर, तुम्हारे मेहमान को जलील कर दिया गया, उठो और बदला लो। और जसास ने जाकर अपने बहनों को कत्ल कर दिया। चुनाचे वो जो जंग छिड़ी है तुगलब और बनी बकर के दरमियान 40 साल तक जारी रही और इतना खून हुआ है उसमें, इतने बेवाएं पैदा हुई, इतने यतीम पैदा हुए उसकी जंग के नतीजे में, कि वसी पैमाने पर इंसानियत ने दुख उठाए हैं। लेकिन अरब इस बात पर कायम रहा कि हम माफ नहीं कर सकते, हम बदला लेते हैं। ये थे हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमवतन लोग, जिनमें से आ हुजूर का नूर फूटा है। और माफ किनको किया है ये देखें फिर आप, कैसे कैसे जुल्म की दास्तानें बिखरी पड़ी थी मक्का के साथ वाबस्ता होकर। उन गुलाम, आपके गुलामों को वहां घसीटने वाले, मुसलमान औरतों को शर्मगाहों में नेजे मार के हलाक कर देने वाले, बच्चों को ज़बह कर देने वाले, घरों से निकालने वाले, 3-3 साल तक पाखों के दुख देने वाले, एक दुख था कोई, बे इंतहा दुख थे। और आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हजरत यूसुफ के भाइयों वाला सलूक कब हुआ था? आपके गिर तो पहरा लगा हुआ था कि इसको जिंदा बच के जाने ही नहीं देना, और सारे कबाइल ने अहद किया था कि हम सारे इसके कत्ल में शामिल होंगे, हर कबीले का नेजा इसके सीने पर पड़ेगा। ये वो लोग थे जिनको माफ किया गया था। और माफ भी इस शान से किया है कि सिर्फ ला तसरीबा अलैकुम का एक फिक्रा नहीं है, उसके बाद जो माफी के समंदर खुल जाता है वो है कि दास्तान बड़ी तवील है। एक एक मुजरिम जिसके आप किस्सा सुने कि उसने क्या कुछ किया था और किस तरह हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे माफी का सलूक फरमाया है, तो अकल दंग रह जाती है। सिर्फ ये कह देना कि ला तसरीबा अलैकुम अल्यौम, ये तो कोई चीज ही नहीं है। उस ला तसरीब के असरात क्या जाहिर हुए, कहां कहां पड़े, किन किन लोगों पर वो जाहिर हुए, ये है वो तफसील जो और के लायक है। हिंद वो औरत थी, अबू सुफियान की बीवी, जिसने हजरत हमजा का कलेजा निकालकर चबा लिया था और खून जुबान से चाटा था, और आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उस जंगे ओहद में सबसे ज्यादा दुख हजरत हमजा की शहादत का। इस कदर बेकरारी से आप इजहार फरमाते थे उस दुख का कि मैंने सारी तारीख में किसी और दुख का इस तरह जिक्र नहीं पड़ा। वो निकाब ओढ़कर शामिल हो गई और हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फैसला फरमाया था कि उसको माफ नहीं करूंगा, लेकिन शामिल हो गई, बैत में दाखिल हो गई, आ हुज़ूर को उसकी आवाज और हरकतों से पता चल गया कि कौन है। लेकिन बहाना चाहिए था आपको तो माफी का, कि अच्छा ठीक है तुम भी माफ। वो बोली, एक दफा बोली, दूसरी दफा बोली, और उस वक्त भी उसने गुस्ताखियां की। मसलन आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब बैत के अल्फाज दोहराए तो कहने लगी कि मर्दों से तो आप ये बैत नहीं लेते, औरतों से क्या क्यों ये बैत ले रहे हैं। आ हजरत समझ गए कि कौन है। फिर उसके बाद आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह अहद लिया कि अपने बच्चों को कत्ल नहीं करेंगे। यानी कुरान करीम जो फरमाता है उसका और मफहूम है। तो हिंद बोली कि हमने जो बच्चे पाल पोस के जवान किए थे वो तो जंगे बदर के दिन आपने कत्ल किए। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जख्मों पर नमक पाशी हो रही थी उस वक्त। यानी ऐसा शख्स जो इस कदर ढिटाई के साथ आगे से जवाब कर दे रहा है और गुस्ताखियां कर रहा है, हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब में मुस्कुरा के फरमाया, हिंद मैं जानता हूं तुम उतबा की बेटी हो ना। और उस पर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये फरमाया फिर कि देखो चोरी भी ना करो, नहीं था, उसने कहा कि मैं इसको पिछली सारी चोरियां माफ कर देता हूं। या रसूलुल्लाह आप भी माफ कर। कहां खामन के चंद पैसे वो माफ करना, कहां उस हिंदा को माफ करना जिसने आपके चाचा का जिगर चबा लिया था। आपने फरमाया ठीक है मैं इसको माफ करता हूं। ये थे मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये था ला तसरीबा अलैकुम यौम का मुजाहरा जो हुजूर अकरम से रूनुमा हुआ। इकरमा बिन अबू जहल, वो जो सबसे ज्यादा खबासत और दुख देने में आगे बढ़ गया था अबू जहल, उसका बेटा इकरमा भी उन लोगों में से था जिसको हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शुरू में माफ ना करने का फैसला फरमाया। ये वही है जिसने जंगे उहद में गैर मामूली किरदार अदा किया था कुफार मक्का की तरफ से, और खालिद बिन वलीद के अलावा उस जंग में मुसलमानों के खिलाफ पासा पलटने का अगर कोई चेहरा कहला सकता है तो इसके सर पर था। बड़ा तेज तर्रार, वो बड़ा काबिल जर्नैल था। वो इस खौफ से भाग गया कि मैं हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हल्के असर से ही निकल जाऊं, जहां तक हुज़ूर अकरम का असर है वहां से बाहर निकल जाऊं। चुनांचे वो जुनूब की तरफ दौड़ा और फिर वहां से हिजरत हबशा करने के लिए, भी उसकी एक हिजरत थी, हबशा की तरफ जाने के लिए वो कश्ती में बैठ रहा था तो इतने में उसकी बीवी पीछे पहुंची और उसने उसको कहा कि तुम दुनिया में सबसे ज्यादा मोहसिन से भाग रहे हो, सबसे ज्यादा बख्शिश करने वाले से भाग रहे हो, तुम्हारे दिमाग को क्या हुआ। उसने कहा क्या रसूलुल्लाह सल्लम मुझे भी माफ कर देंगे। उसने कहा चल के देखो तो सही। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम हो गया कि इकरमा की बीवी लेने गई है और शायद उसको लेके वापस आ जाए। इंतकाम देखें किस तरह ले रहे हैं। ला तसरीबा अलैकुम का क्या मफ़हूम उस वक्त ज़ाहिर होता है। सहाबा को नसीहत फरमाई कि देखो इकरमा बिन अबू जहल ना कहना, उसको दुख पहुंचेगा। मुर्दों के दुख तुम जिंदों में क्यों मुंतकिल करते हो। अबू जहल मर गया, वो खुदा के हुजूर हाजिर हो गया, जो उसके साथ सलूक होना है वो उसके साथ होगा, उसकी वजह से तुम जिंदों को क्यों दुख देते हो। इसलिए इकरमा को हरगिज़ इकरमा बिन अबू जहल नहीं कहना। ये थी उसकी तैयारी। यानी जब आया तो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खबर मिली, उसी वक्त उठ खड़े हुए और चादर भी नहीं ली, चल पड़े और फरमाने लगे मरहबम बिर राकिबिल मुहाजरी, मरहबम बिर राकिबिल मुहाजरी, कि इस ऊंटनी के सवार मुहाजिर को मरहबा मरहबा। वो वापस आ गया। ये था सलूक हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम था। ये था ला तसरीबा अलैकुम का मंजर। और फिर उसी पर बस नहीं की, अपनी चादर उसको अता कर दी। फिर उसने कहा कि या रसूलल्लाह मुझे माफ कर दे, मैंने बहुत जुल्म किए हैं, बहुत दुख दिए हैं आपको। आपने फरमाया माफी, माफी कैसी, मैं तो तुम्हें माफी से कुछ ज्यादा देना चाहता हूं। माफ भी कर दिया। और मैं तुम्हें कहता हूं कि मांगो जो मांगते हो, अगर मेरी ताकत में हुआ तो मैं खुदा की कसम तुम्हें अता करता। इकबा ने कहा, या रसूलल्लाह अगर यही अता करना है तो फिर मैं ये मांगता हूं कि मेरे लिए बख्शिश की दुआ करें, अल्लाह ताला मेरे सारे गुनाह माफ करें। आपने उसी वक्त दुआ की कि ऐ अल्लाह इकरमा के सारे गुनाह माफ फरमा दे, इसमें इससे बख्शिश की दुआ इल्तिजा करता हूं तेरे। ये थे हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो जब इन लात सरीबा के वाकयात पर आप गौर करेंगे तो एक नहीं सैकड़ों ऐसे वाकयात आपके सामने आएंगे कि जिसके असरात फैलते चले जाते हैं, और अजीब शान के साथ वो असरात फिर नए असरात में तब्दील हो जाते हैं। यानी एहसान जो है वो एक जगह जाकर रुक नहीं जाता, वो नए एहसानात के चश्मे उससे फूटने लग जाते हैं। ये ख्याल कर लेना कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब माफ कर दिया था तो बड़ा आसान था माफ करना, इससे बड़ी बेवकूफी कोई नहीं होती। अभी तो वो खून जो बहाया गया मुसलमान मजलूमों का, अभी तो वो ताजा था, अभी तो उसका रंग भी तब्दील नहीं हुआ। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मुआफ फरमा रहे थे हिंद को, तो क्या आप समझते हैं कि आप भूल गए थे कि हजरत हमजा के साथ क्या हुई थी? जब मुआफ फरमा रहे थे बिलाल पर जुल्म करने वालों को, तो आपको याद नहीं रहा था कि बिलाल को किस तरह गलियों में घसीटा जाया करता था? एक एक चीज आपके जहन में थी, एक एक दुख ताजा था। कितना गैर मामूली सबर आपने किया होगा, कितना गैर मामूली दुख बर्दाश्त करके आपने माफ किया होगा, यह भी एक चीज का मंजर। और फिर अल्लाह ताला ने आपके दुख को जिनको माफ किया था उनके दुख में तब्दील कर दिया। माफ तो वो हो गए, लेकिन हमेशा एक अजीम पेशेमानी की हालत में उन्होंने जिंदगी बसर की, उनके दिलों के दुख ताजा रहे। माफ होने के बावजूद हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को माफ करते वक्त जो दुख महसूस हुआ होगा वो सारी उम्र उनके सीनों में दुख बन के खटकता रहा। माफी के नतीजे में बाद दफा बेहयाई पैदा होती है और बाद दफा पशेमानी पैदा होती है। कुरान करीम फरमाता है वमन अफा व असलाहा फाजरहू अलल्लाह, कि माफ करो बहुत अच्छी चीज है, लेकिन यह फैसला कर लेना कि माफी के नतीजे में पेशेमानी पैदा होगी और इस्लाह होगी या बेहयाई पैदा होगी। अगर बेहयाई पैदा होगी तो तुम्हें माफी की इजाजत नहीं। चुनांचे हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहां यह देखा कि इससे इस्लाह नहीं होगी वहां माफ नहीं फरमाया, यह भी एक पहलू है, और जहां देखा कि माफी से इस्लाह होगी वहां माफ फरमाया। और ऐसी हैरत अंगेज इस्लाह के नमूने हम देखते हैं कि दुनिया की तारीख में उसकी कोई मिसाल नजर नहीं आती। इनकलाब आ गया उन लोगों के दिलों में। वो वाकया जो आपने सुनना है तो बारहा हजरत उमर के वक्त में एक मौका ऐसा आया कि हजरत उमर मक्के हज के लिए तशरीफ ले गए, वहां बड़े बड़े रऊ साहब से मिलने के लिए आए, एक बड़ा जमघट था और बहुत से पुराने गुलाम भी मिलने के लिए हाजिर हुए। हजरत उमर ने नाम ले लेकर गुलामों को आगे बुलाना शुरू किया और रऊ साहब मक्का को देख रहे थे और उनको आगे नहीं बुलाते थे। चुनाच उन्होंने महसूस किया, बड़ी सख्त जिल्लत महसूस की, ये वही कौम थी ना जसात वाली कौम जो एक छोटी सी अदना सी बात के ऊपर एक परिंदे के अंडों के ऊपर इतना कत्लो गारत कर सकती थी। बहरहाल आप वो देखते रहे, आप एक के बाद दूसरे गुलाम को आगे बुलाते रहे और बड़े बड़े सरदार पीछे बैठे रह गए। उस वक्त अबू सुफियान के मुतल्लिक एक रिवायत में आता, वो भी उन लोगों में था, उसने कहा कि आज से ज्यादा जिल्लत का दिन भी कभी हमें देखना नसीब हुआ है। उस पर सुहैल बिन अमर ने जो सुलह हुदैबिया के वक्त कातिब था लिखने वाला, वो बड़ा समझदार आदमी था, उसने उसके जवाब में कहा कि तुम्हें पता नहीं कि ये वो लोग हैं जबकि तुम्हें हदायत की तरफ बुलाया जा रहा था तो तुम महरूम रहे और लब्बैक नहीं की। इन गुलामों ही ने तो हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज पर लब्बैक कहा। तुम्हारे दिल पे तो ये दुख होना चाहिए कि हम महरूम रह गए उस अजीम सादत से। ये भी कोई सादत है जिससे महरूमी का तुम शिकवा कर रहे हो कि आज हमें जगह नहीं मिली आगे? ये तो कोई चीज ही नहीं उसके मुकाबले पर। जिस सादत से तुम महरूम रह गए हो वो ये सादत थी कि हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तुम्हें बुला रहे थे तो तुम पीछे फेर कर दूसरी तरफ जा रहे थे। इस जवाब को सुनकर उसने और बाद और सरदारों ने यह फैसला किया खुद ही कि अब हम पता तो करें कि इसका हल क्या है। आखिर अरब थे, बागैरत कौम थी। मालूम होने के बावजूद, एहसास होने के बावजूद कि हम कसूरवार हैं, फिर भी चाहते थे कि उन इज्जतों को हासिल करें जो खोई गई है। चुनाचे उन्होंने ये सोचकर आपस में बातें की और हजरत उमर के पास चले गए और कहा कि ये दो आदमी के मुतल्लिक पता चलता है, हारिस और हारिस बिन हिशाम जो अबू जहल का सगा भाई था, और हजरत सुहैल बिन अमर, ये दोनों गए और जाकर ये कहा कि या अमीरुल मोमिनीन, हमें मालूम है कि हमसे ये सलूक क्यों हुआ, हम उसका शिकवा लेके नहीं आए, हम सिर्फ ये पूछना चाहते हैं कि कोई जाले की सूरत है। हजरत उमर के मुतालिक आता है कि आवाज गुलू गिर हो गई, मुंह से कोई लफ्ज नहीं निकल सकता था दुख की वजह से, और यरमूक में लड़ाई हो रही थी, उस तरफ इशारा किया कि एक ही सूरत है, यानी मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो तुम्हें तुम्हारे खून बख्श दिए हैं, लेकिन मैं जानता हूं कि तुम कभी अपना खून खुद नहीं बख्श सकोगे। तुम्हें जब तक खून नहीं बहा दोगे अपना, उस वक्त तक तुम्हें चैन नसीब नहीं होगा, तुम अपनी खोई इज्जतों को हासिल नहीं कर सकोगे। तो बख्शिश का एक ये भी नमूना था, ये भी असर था, यानी एक और हुस्न में तब्दील हो गई बख्शिश। कुर्बानी के ऐसे अजीम शान मज़ाहिर फिर देखने में आए इस बख्शिश के नतीजे में कि वो दुनिया की तारीख में चांद सूरज की तरह रोशन दिखाई देते। सुहैल और हारिस, इन दोनों ने वो इशारा समझ लिया, और सवाए सुहैल की एक बेटी के जो पीछे छोड़ दी गई, अपना सारा खानदान उसने लिया, और अमर ने भी, हारिस ने भी अपना सारा खानदान लिया और शिमाल की तरफ उस जहाज में शिरकत करने के लिए चले गए। मौरखीन कहते हैं कि वो बेटी बची सिर्फ जो यहां रह गई थी, और एक हारिस का बेटा बच गया, और बाकी सारा खानदान या वहां शहीद हो गया या वहां उस सफर की हालत में मर गया, एक भी वापस नहीं आया। ये नेकी जो वहां नजर आती है, ये हैरत अंगेज हुस्न एहसान का नमूना जो वहां दिखाई देता है, ये कहां से पैदा हुआ था? हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बख्शिश का एक छोटा सा फल था। यानी हर नेकी हुजूर अकरम से फूट रही थी, हर हुस्न का मंबा और चश्मा हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। तो ला तसरीबा अलैकुमुल यौम कह देना सिर्फ काफी नहीं है, ये सर धुन देना कि बड़ा मजा आया हुजूर अकरम ने फरमा दिया ला तसरीबा अलैकुम, किन दुखों से गुजर कर ये ला तसरीबा फरमाया गया था। आजकल तो जो झगड़े मेरे सामने आते हैं, छोटी छोटी बातें भी लोग बाद माफ नहीं कर सकते, अदना अदना लड़ाइयों के नतीजे में हम किस तरह हमारी गैरत बर्दाश्त नहीं कर सकती। इसने फलां हमारे बाप को यह कहा था, फलां चाचा को यह कहा था, हम में गैरत नहीं है कि हम किस तरह इसके साथ मुंह लगाएं, इसको मुंह लगाएं। और दूसरी तरफ हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ में रोते भी हैं, दिल उनका वाकयातन कुरता भी है, हम महसूस करता है आपके दुखों से, लेकिन ये महसूस नहीं करते कि इसको हमने अपनी जात में भी तो जारी करना है। लेकिन अजीब एहसान है हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का या अल्लाह ताला का आपकी जात पर ऐसी कामिल तालीम अता फरमाई कि जो माफ नहीं कर सकते उनके लिए भी ताना नहीं रखा कोई। यह भी आपको पेश नजर रखना चाहिए, यह नहीं कि आप खुतबा सुन के वापस जाएं घरों में और लोग उन लोगों को ताना देना शुरू कर दें जो जायज तौर पर मजलूम है, नहीं कर सकते। कुरान करीम फरमाता है कि इसकी भी तुम्हें इजाजत नहीं। یہ بھی اس حسن کے خلاف ہے جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاشرے میں اللہ تعالیٰ پیدا فرمانا چاہتا ہے. فرمایا جو مظلوم ہے اگر وہ معاف نہیں کر سکتا تو اتنا بدلہ لینے کی اجازت ہے اس کو, اور اس پر کوئی حرف نہیں ہے, کوئی پکڑ نہیں ہے. تمہیں اجازت نہیں ہے کہ اس کو تانے دو اور کہو کہ تم نے معاف کیوں نہیں کیا, کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معاف فرمایا کرتے تھے, تم بھی ضرور معاف کرو. وہ کہہ سکتا ہے کہ میں نسبتاً ادنا مقام پر فائز ہوں, میں عدل سے آگے بڑھنے کی طاقت نہیں پاتا. یہ کم از کم سوسائٹی ہے اسلام کی. لیکن ومن افا واصلح فاجره للہ, جو آگے بڑھ سکتا ہے اس کا اجر اللہ پر ہے. تو سوسائٹی کو حسین بنانے کے لیے ہر کوشش کی گئی قرآن کریم میں اور سنت میں, اور ہر دکھ اور ہر امکانی دکھ سے محفوظ رکھا گیا سوسائٹی کو. زبانوں کو روکا گیا, زبانوں کو ادب سکھایا گیا, ہر ایک کو اپنا مقام بتایا گیا, کہاں تک رہنا ہے تم نے, کہاں آگے بڑھنا ہے, کہاں رک جانا ہے. یہ سارے جو حسن و احسان کے کرشمے ہیں یہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے پھوٹے تھے. آپ سے باہر ہے یہ قلزم حسن و احسان کا جس نے ساری دنیا کو بھرنا ہے لیکن ابھی تک نہیں بھر سکے. اس لیے کہ وہ قربانی کرنے والے لوگ نہیں ہیں جو اپنے ذات میں اس حسن کو جاری کریں. جماعت احمدیہ پر ذمہ داری عائد ہوتی. ہر ممکن کوشش کریں, ہر فرد یہ کوشش کرے کہ آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قائم فرمودہ عدل پر بھی قائم ہو, آپ کے احسان پر بھی قائم ہو, اور پھر دعا کرے کہ خدا تعالیٰ اس عالی مقام پر فائز فرما دے جس کو ایتائے ذی القربا کہا جاتا ہے. اس کے عجیب و غریب حیرت انگیز مناظر ہیں آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں, لیکن اب تو اس کا بیان کا وقت نہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ حضور اکرم کی سیرت کو اپنی سیرت بنائیں, اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلق کو اپنی ذات میں زندہ کر کے دنیا کے سامنے پیش کریں.
الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله, إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.